करिश्मा जी अपने जिन रूप में आकर उस दानव से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन वे उससे नहीं लड़ पाईं। उस दानव ने अपने मुंह से निकलती शोलों से करिश्मा और अमन दोनों पर हमला कर दिया था, जिससे वे दोनों मुंह के बल गिर पड़े थे, और गिरते ही वे दोनों इंसानी रूप में आ गए थे। उन दोनों के गिरते ही तारापरी की एक भयानक चीख निकल गई थी। तारापरी को लगने लगा था कि वो इस दानव से नहीं बच पाएगी और ये दानव उसे उस राक्षस के पास ले जाएगा, और तभी वो दानव तारापरी की ओर बढ़ने लगा था। तारापरी डर के मारे कांपने लगी थी और उसने मान का हाथ कसकर पकड़ लिया था, लेकिन अब वो दानव उसके कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच चुका था। तभी मान उस दानव के सामने खड़ा हो गया था और उसे घूर घूर कर देखने लगा था, लेकिन उस दानव पर उसका कोई असर नहीं हुआ था। जबकि मान के अंदर इतनी शक्ति थी कि अगर वो किसी पत्थर या पहाड़ को घूर कर देखे तो वो उसकी आंखों की तपिश से टूटकर अलग हो जाते थे, लेकिन यहाँ तो इस दानव पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था। तब उस दानव ने अपना विशालकाय हाथ आगे बढ़ाकर मान को अपनी मुट्ठी में भींच लिया था। तारापरी की चीख निकल गई थी। वहीं अमन और करिश्मा जी ने भी मान को उस दानव की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए उस दानव पर एक जादुई तलवार से हमला करना शुरू कर दिया था। रानी माँ तारापरी को बता चुकी थीं कि इस दानव को केवल तिलिस्मी पत्थर के द्वारा ही खत्म किया जा सकता था, और तारापरी इसी मौके की तलाश में थी कि कब वो तिलिस्मी पत्थर वाली बात दोनों भाइयों के कानों में डाले। वे तीनों माँ बेटे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर रहे थे उस दानव को हराने के लिए, लेकिन उस दानव पर किसी भी जादू के किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा था, और वो मान को निगलने के लिए उसने अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया था, और वो मानसिंह राठौड़ को निगलने ही वाला था कि तभी मान ने अपनी पतला होने वाली शक्ति का प्रयोग किया, और इससे पहले कि वो दानव उसे अपने मुंह में रखता, वो उस दानव की मुट्ठी से फिसलकर नीचे गिर गया था। उसका जिस्म एकदम पतला हो गया था, ऐसा लग रहा था मानो कोई पापड़ हो। वो नीचे गिरते ही वो सामान्य हो चुका था, और फिर कुछ पल के लिए इस दानव ने करिश्मा जी और अमन मान को एक नज़र देखा था, और वो दानव समझ गया था कि जब तक ये तीनों शक्तिशाली लोग उसके सामने खड़े हैं, वो तारापरी को वहां से नहीं ले जा सकता था। इसलिए उस दानव ने उन तीनों माँ बेटों पर एक साथ हमला कर दिया था। उसका हमला बड़ा ही जोरदार था, जिससे कुछ देर के लिए वे तीनों माँ बेटे मूर्छित हो गए थे। तब वो दानव तारापरी के पास गया और उसे पकड़कर उठा लिया। उस दानव ने तारापरी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया था। तारापरी चिल्लाने लगी थी। तब रानी माँ ने अपनी जादुई शक्ति से उस दानव पर वार किया था। वो दानव रानी माँ को अच्छे से देख सकता था। तब उसने रानी माँ पर वार करके उन्हें भी जख्मी कर दिया था। अपनी माँ और उन तीनों माँ बेटों को जख्मी देख तारापरी जोर से चिल्लाने लगी थी, और वो उस दानव की पकड़ से ही चिल्लाकर बोली थी, अमन सर, मान के साथ मिलकर तिलिस्मी पत्थर से इस दानव पर हमला करो। अमन सर उठो, हिम्मत करो, और प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज अमन सर मुझे बचा लो, बचा लो मुझे। अमन और मान दोनों ने अर्धमूर्छित अवस्था में ही तारा की बात सुन ली थी, और तभी अमन ने तिलिस्मी पत्थर बाहर लाने का एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते कुछ ही पलों में तिलिस्मी पत्थर वहां मौजूद था। तिलिस्मी पत्थर आते ही वे दोनों भाई वापस से अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे, क्योंकि उस तिलिस्मी पत्थर ने उन्हें एक बार फिर से मजबूत और ताकतवर कर दिया था। और तब अमन ने मान का हाथ पकड़ा और दोनों भाइयों ने इंसानी सूरत में ही तिलिस्मी पत्थर से उस दानव पर हमला कर दिया था, और तिलिस्मी पत्थर से निकलती रोशनी जैसे ही उस दानव के भयानक जिस्म पर पड़ी, वो जलने लगा था, और उस दानव की दर्द भरी चीख से पूरा बंगला गूंज उठा था। और जैसे जैसे दानव का भयानक जिस्म जलता जा रहा था, वैसे वैसे तारापरी पर उसकी पकड़ ढीली होती जा रही थी। तभी अचानक वो दानव पूरा जलने लगा था और तारा उसके हाथ से छूट गई थी। तारापरी करीब 40 फीट की ऊंचाई पर थी और वो वहां से गिरने ही वाली थी कि तभी अमन और मान दोनों भाई भागकर वहां पहुंच गए, और उन्होंने ऊपर से ही तारा को पकड़ लिया, और कुछ पल के लिए उन तीनों ने आपस में एक दूसरे को देखा। फिर मान ने तारा को अपने साथ खड़ा किया और वे तीनों एक साथ उस दानव को जलते हुए देखने लगे थे। जल्दी ही वो दानव पूरी तरह से तिलिस्मी पत्थर की आग में जल चुका था, और उसका पूरा दानव रूपी शरीर जलकर भस्म हो चुका था, और वो राख बनकर वहां से गायब हो चुका था। करिश्मा जी भी अपने बेटों के पास आ गई थी। रानी माँ ने भी उस दानव के राख होने पर चैन की सांस ली थी, और उस दानव के जलने के बाद उन चारों ने राहत की सांस ली थी। तारापरी की तो मानो जान में जान आ गई थी, लेकिन उसका दिल अब बेहद डर चुका था। उस राक्षस के ख्याल से ही वो कांप उठी थी और अब खड़ी खड़ी बेहोश हो चुकी थी। अमन और मान ने जल्दी से उसे उठाया और अंदर एक कमरे में ले गए थे। तब करिश्मा जी ने एक नज़र अपने बंगले की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से खंडहर हो चुका था। केवल एक दो कमरे ही सही सलामत बचे थे, वरना सब तबाह हो चुका था। करिश्मा जी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि उस दानव ने अपनी राक्षसी शक्ति से उन पर वार किया था। सो उन्होंने अपनी कमजोरी दूर करने के लिए तिलिस्मी पत्थर को अपने हाथ में लिया और कुछ पढ़ते हुए अपने माथे से छुआ दिया था, और देखते ही देखते करिश्मा जी के अंदर से भी एक रोशनी निकलने लगी, और जल्दी ही उन्हें उनकी सारी शक्तियां वापस मिल गई थी, और वे एकदम से अपने आप को तरोताजा महसूस करने लगी थी। खुद को ठीक करते ही करिश्मा जी ने अपने कुछ चिन्हों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि मेरे पलक झपकते ही
पूरा का पूरा बंगला, जो कि अब एक कबाड़खाना बन चुका है, उसे वापस से एकदम पहले जैसा खूबसूरत बना दे। और उन जिन्नों ने आज्ञा का पालन करते हुए बंगले पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में वो बंगला पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन गया। कुछ ही पल में पूरा का पूरा बंगला चमक उठा था। बंगले को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले यहाँ एक भयंकर युद्ध चल रहा था। पूरा का पूरा बंगला ठीक होने के बाद करिश्मा जी तारापरी के कमरे की ओर चल पड़ी थी और वो सोच रही थी, आज जो कुछ भी तारा की आंखों के सामने हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आखिर वो तो एक इंसान है, वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर पाएगी। अपनी बेटी के लिए करिश्मा जी को इस तरह से सोचता देख रानी माँ मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी कि चलो अच्छा है, इस लोक में भी मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए एक माँ यहाँ मौजूद है। रानी माँ ज्यादा देर पृथ्वी पर नहीं रुक सकती थी, इसलिए एक नजर तारापरी को देखती हुई वो परलोक के लिए रवाना हो चुकी थी। उन्हें जाकर कुलदेवता को धन्यवाद भी तो देना था। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित एक गहरे घने जंगल में पहुंच चुका था। उसने सोच लिया था, अमन की जिंदगी से तारा को निकालने के लिए वो अब किसी और काली शक्ति का प्रयोग करेगा। वो सीधे तौर पर अमन पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसकी हार निश्चित थी। अमन की जिंदगी में लड़की के आते ही उसकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ चुकी थीं, इसलिए वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने सोच लिया था कि सबसे पहले तारा को उसकी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा और अमन को कमजोर करके तब उसके आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा और उसे हराकर तिलिस्मी पत्थर अपने कब्जे में कर लेगा। अमित जिस जगह पहुंचा था वहां एक विशाल काली पत्तियों का दरख्त था जिसकी बड़ी ही ऊंची चोटी थी।
जिस तरह से अमन के बगीचे का बरगद का पेड़ था जो सबको शीतल हवा प्रदान करता था, जिसके नीचे बैठने से लोगों के जिस्मानी दुख दर्द सब गायब हो जाते थे, वो सफ़ेद जिन्नों का पेड़ था जिसमें अच्छाई ही अच्छाई थी। लेकिन जिस पेड़ के पास अमित गया था, ये काली शक्तियों काली जिन्नों का पेड़ था जिसमें बुराई के अलावा कुछ नहीं था। और इतना ही नहीं, जब जब पृथ्वी पर तिलिस्मी पत्थर को लेकर युद्ध होते आए थे और जितने भी उन युद्धों में काले जिन्नों की मौत होती थी, उन सब की रूह उस दरख्त में आकर समा जाती थी। उस दरख्त को जंगल में खोजना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। कितनी ही काली शक्तियों ने उस दरख्त को जंगल में नज़रबंद किया हुआ था, जिसे कोई भी आम आदमी या ताकतवर आदमी आसानी से नहीं देख सकता था। अमित तो काली शक्तियों का मालिक था, सो जैसे ही वो उस दरख्त के पास पहुंचा, सभी काले जिन्नों की आत्मा ने उसे सलाम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि उन सबको अमित से काफ़ी उम्मीदें थीं, उन्हें लगता था अमित जल्दी वो तिलिस्मी पत्थर ले आएगा और उन सबकी रूहों को आज़ाद करा देगा। अमित उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उसने वहीं धरती पर एक गोल घेरा बना लिया था और वो उस घेरे में अपने सीधे हाथ की एक उंगली से कुछ मंत्र लिखने लगा था। और देखते ही देखते अजीब सा शोर वहां होने लगा था और उस पेड़ की पत्तियों में झनझनाहट होने शुरू हो गई थी, क्योंकि उस पेड़ के नीचे अमित ने जिस काली शक्ति को बुलाने के लिए मंत्र लिखा था वो बेहद खतरनाक काली शक्ति थी जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया था। वहीं दूसरी ओर अमन और मान तारा को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो होश में नहीं आ पा रही थी। तब मान ने अमन से पूछा, भाई क्या हुआ है, तारा के होश में क्यों नहीं आ रही है? तब अमन बोला, ये दानव चुड़ैल भूत ये सब हम लोगों के लिए आम बात है, लेकिन तारा एक इंसान है, भला वो ये सब कैसे देख सकती थी? और जिस दानव को देखकर हमें भी डर लग रहा था, तो सोचो ये बेचारी तो फिर भी एक इंसान थी, इस पर क्या तुजरी होगी? हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये होश में क्यों नहीं आ रही है? तभी करिश्मा जी वहां आ गई थीं और बोली, अभी